So, good morning. I see there's a revolution.
लगता है कुछ क्रांति हो गई है.
The ladies are sitting on the other side today.
महिलाएं कुछ अलग बाजू में बैठी हैं आज.
It's very nice to see that things can change.
और ये देखना बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बातें बदल रही हैं.
So, can everybody hear us?
तो क्या सभी लोग हम लोगों को सुन सकते हैं?
I suppose those that can't hear us don't even know that we've said, can you hear us?
So, ab jo log humko sun nahi sakte shayad humne kya sawal pucha ye bhi unko sunai nahi diya hoga.
So before I begin, I want to just rejoice in some merits.
To shuruaat karne ke pehle main kuch logon ka punyanumodan karna chahta hu.
There's some activities going on in India that probably not many people know about.
To kuch aise kaarya bharat mein chal raha hai shayad iske bare mein zyada logon ko pata nahi hoga.
For some years now, one of our brothers has been in Kerala.
So, कुछ सालों से हमारे एक भाई केरला में है.
That's Tej Bhadra.
और ये तेज भद्र है.
Where is he?
कहाँ पर?
Ah, he's been living in Kerala.
तो ये केरला में रहते हैं.
And he's been devoting himself to Dhamma practice and trying to get other people interested in Dhamma.
तो उन्होंने अपने आप को धम्म आचरण के लिए और दूसरे लोगों को धम्म में रुचि निर्माण करने के लिए समर्पित किया है.
It's been very difficult for him.
उनके लिए ये काल बड़ा कठिन था.
He's been a very long way from other members of the order.
संघ के बाकी सदस्यों से वो बहुत दूर रहते हैं.
And he says, well, people don't respond to his letters.
और वो कहते हैं कि वो पत्र भेजते हैं लेकिन लोग उनके पत्र को प्रतिसाद नहीं देते.
So I said, don't worry about that. They don't respond to my letters either.
मैंने उनको कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं भी जब लोगों को पत्र लिखता हूं तो मुझे भी प्रतिसाद नहीं मिलता.
Ours isn't a letter writing order.
तो अपना संघ जो ये पत्र लिखने वाला संघ नहीं है.
But see, he's been down there, he's been practicing on his own and he's been trying to spread Dhamma.
तो वहां पर है, वो अकेले धम्म आचरण कर रहे हैं और धम्म प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं.
Some other dhammacharis have been there just once or twice.
तो एक दो बार कोई अन्य धम्मचारी वहां पर जाकर आए हुए हैं.
But particularly he's received a lot of help and support from Dhammachari Lokabandhu.
लेकिन खास करके उन्हें बहुत ज्यादा सहकार्य मिला है Dhammachari Lokabandhu की तरफ से.
And just in this last year they've really begun to have some success.
और पिछले साल से उन्हें सही में कुछ यश मिलना शुरू हुआ है.
I talked to Tej Bhadra yesterday and he said that every day he has a meditation class with some 8 people in it.
तो कल मैंने तेज भद्र से बात की, उन्होंने बताया कि हर दिन उनका ध्यान का वर्ग चलता है और उनके वर्ग में करीबन 8 लोग हर दिन आते हैं.
And in a general class every week.
और हर सप्ताह उनका जनरल वर्ग होता है.
And now he's got 7 mitras.
और उनके पास अभी 7 मित्र हैं.
So he's doing really well.
तो वो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं.
And particularly he's contacting people from different backgrounds and communities.
और खास करके अलग-अलग पृष्ठभूमि से लोगों के साथ वह संपर्क बढ़ा रहे हैं.
So I want to rejoice in his merits.
तो मैं उनका पुण्यानुमोदन करना चाहता हूं.
It's wonderful that he's come.
बहुत अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर आ पहुँचे हैं.
He's had to come a long way and he's only able to be here for 3 days.
तो उनको बहुत लंबा सफर करना पड़ा और यहाँ वो 3 दिन के लिए आ सके.
But he's here with us and we should not forget him.
तो वह हमारे साथ यहाँ पर है और हमने उन्हें भूलना नहीं चाहिए.
He's our brother in the Sangha working so many miles from us all.
तो हमारे धम्म भाई है जो बहुत दूरी पर रहकर धम्म का कार्य कर रहे हैं.
So I just wanted to rejoice in his merits and also in Lokabandhu's merits.
तो मैं उनका पुण्यानुमोदन करना चाहता था और लोकबंधु का भी.
Because he's been supporting us. And in a way this does illustrate the theme that I want to talk about.
तो एक तरह से मैं जिस विषय के बारे में आज बोलने जा रहा हूं उसका ही ये कुछ उदाहरण है.
Because today I want to talk about the movement.
क्योंकि आज मुझे आंदोलन के बारे में बात करना है.
As you know, yesterday we started reviewing the principles of our order and movement.
तो कल आपको जैसे पता है कि हमने अपना संघ और आंदोलन के जो तत्व है उनका पुनर्विचार करना शुरू किया है.
And I was asking you if you agreed with our understanding of the order, and today I'll be asking you that about the movement.
और मैं आपसे पूछ रहा था कि संघ के बारे में हमारी समझदारी क्या है और आंदोलन के बारे में आज हम देख रहे हैं.
So that's the first thing I'm going to do today again.
तो ये पहली बात है जो आज हम कर रहे हैं.
I'll tell you about the principles we understand underlie the movement.
मैं आंदोलन के अंतर्गत जो कुछ तत्व है उन्हें बताने की कोशिश करूंगा.
We'll talk about what kind of a an organization, if you like, the movement is.
And then, I think Mulshuri is not hearing. Samal is not hearing. आपको सुनाई नहीं दे रहा ठीक से.
Do you want to move? Is it?
थोड़ी जगह बदल सकते हैं तो अच्छा होगा.
It might be more difficult if you're a bit to our side. Yeah.
तो इधर भी अगर कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता होगा तो. हाँ बैठ सकते हैं.
Yes, come to the front.
Yeah, सामने भी बैठ सकते हैं.
Vimalashuriji, aiye. Anybody else who wants to come to the front? There's plenty of room here. Yeah. So, yes, we want to talk about the public preceptors handing on their responsibilities within the movement.
तो आंदोलन की जिम्मेदारी जो जाहिर उपाध्याय जो दूसरों की तरफ देना चाहते हैं उसके बारे में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं.
And we want to see how those responsibilities can be fulfilled in the future.
और हम ये देखना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारियां भविष्य में किस तरह से पूरी की जा सकती है.
So, what is the movement?
तो आंदोलन क्या है?
Well, probably most of you, if I say the word movement, you'll think of our Dhamma centers.
तो अगर मैं आंदोलन कहता हूं तो ज्यादातर आप लोग धम्म केंद्रों के बारे में सोचेंगे.
You'll think of the Nagpur center, the Pune centers, and so on.
तो आप नागपुर केंद्र हो या पुणे केंद्र या और केंद्र इस तरह से सोचेंगे.
You'll think of Modinagar.
तो आप मोदीनगर की सोचेंगे.
So you'll think of the movement as our existing Dhamma centers.
तो जब आंदोलन की बात हम करते हैं तो हमारे जो अभी के अस्तित्व में जो केंद्र है उसके बारे में हम सोचते हैं.
But then of course, well, it's just not just Dhamma centers, there's also Dhamma activities.
तो ये केवल धम्म केंद्र ही नहीं है बल्कि धम्म के कार्य भी है.
So Tejabhadra is doing Dhamma classes in Trivandrum.
तो तेजभद्र त्रिवेंद्रम में धम्म वर्ग ले रहे
हैं. Manjuveer has started doing classes in Vishakhapatnam.
मंजूवीर ने विशाखापट्टनम में कुछ क्लासेस लेना शुरू किया है.
So are those the movement?
तो क्या ये आंदोलन है?
Yes, cautious nods. Yes, yes, those are the movement.
तो हाँ ये ही आंदोलन है.
Now you probably also think, well, our BH activities are part of the movement.
तो शायद आप ये भी सोचेंगे कि अपने बहुजन हिताय का जो कार्य है ये भी आंदोलन का हिस्सा.
Those are not Dhamma activities directly, they're social projects.
तो ये धम्म कार्य नहीं है, प्रत्यक्ष धम्म कार्य नहीं है, ये सामाजिक प्रकल्प है.
But there's so much part of what we do, we probably think of those as part of the movement.
तो वह हम जो कुछ कार्य करते हैं वह इतना उसका अविभाज्य हिस्सा है तो हम उसे भी आंदोलन कहते हैं.
But then, what about new activities?
लेकिन उसके बाद में नए कार्यों के बारे में क्या?
What about new kinds of activities?
तो नए प्रकार के कार्यों के बारे में क्या?
It's quite interesting. Recently, there have been questions about whether some activities are part of the movement or not.
तो अभी-अभी कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए थे कि विशिष्ट बात आंदोलन का हिस्सा है या नहीं?
Now I'm going to mention those activities. And just come to your own decision about whether they're part of the movement or not.
तो मैं कुछ कार्यों को आपके सामने पेश करूंगा और आप निर्णय कीजिए कि ये आंदोलन का हिस्सा है या नहीं.
Maybe even write down your own conclusion.
हो सकता है कि अपनी कॉपी में अपना खुद का निष्कर्ष जो है लिखिए.
And then I'll tell you my conclusion later and you can see whether we agree or not.
और बाद में मैं अपना निष्कर्ष आपको बताऊंगा और आप देखिए कि आप और मैं सहमत है या नहीं.
So, well, there's in England, there's the Buddha field activities.
तो जैसे इंग्लैंड में एक बुद्धा फील्ड का कार्य है.
These are Dhamma activities that are conducted in tents.
तो ये ऐसा धम्म कार्य है जो तंबुओं में किया जाता है.
There's no fixed center.
तो ऐसा कोई पक्का केंद्र नहीं.
They just put on a retreat in a field.
तो ऐसे वो शिविर खेतों में लेते हैं.
With tents.
और वो तंबू खड़े कर देते हैं.
And well, you think that doesn't sound very strange because in India, of course, it's very warm.
तो आपको लगेगा कि अब इसमें तो कोई विचित्र बात नहीं लगती क्योंकि भारत में तो बड़ी उष्णता होती है.
But in England, of course, it's quite cold and it rains a lot.
और इंग्लैंड में भी बहुत ही ठंडा होता है और बहुत बारिश भी होती है.
So you have to be quite tough to go on these retreats.
तो इसलिए इन शिविरों में जाने के लिए आप काफी मजबूत होने चाहिए.
Most of our Indian order members, when they come to England, they like to go on those retreats.
और बहुत सारे जो भारतीय धर्मचारी इंग्लैंड में आते हैं, तो बुद्धफील्ड में जाना उनको बहुत अच्छा लगता है.
Chandrabodhi was a big fan of Buddhafield.
और चंद्रबोधी जो है बुद्धफील्ड को उनको बहुत पसंद आता है.
But are those part of the movement?
लेकिन ये बातें क्या संघ का आंदोलन का हिस्सा है?
Some years ago, there was quite a bit of discussion about that. Were they part of the movement? Were they not part of the movement?
साल पहले इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती थी, ये संघ का आंदोलन का हिस्सा है या नहीं?
Then in India, some time ago, Lokamitra, Maitrenath and others set up the Jambudvipa Trust.
और भारत में भी लोकमित्र, मैत्रेयनाथ और अन्य लोगों ने जम्बूद्वीप संस्था का निर्माण किया।
And there was quite a bit of discussion, was this part of the movement or not?
और फिर उसके बारे में चर्चा हुई कि यह आंदोलन का हिस्सा है या नहीं?
What do you think?
तो आपको क्या लगता है?
Then Chandrabodhi set up the Urgyen Sangharakshita retreat center.
उसके बाद में चंद्रबोधि ने उर्गेन संरक्षित शिविर केंद्र शुरू किया।
Some people thought that wasn't part of the movement.
कुछ लोगों ने यह सोचा कि यह आंदोलन का हिस्सा नहीं है।
People said, well, we've got two retreat centers in our movement. And that's enough.
और कुछ लोगों ने यह सोचा कि दो शिविर केंद्र हमारे आंदोलन में हैं और इतना पर्याप्त है।
Somebody even tried to stop him from setting up this.
कुछ लोगों ने यह शिविर केंद्र शुरुआत करने के लिए उनको रोकने की भी कोशिश की।
So do you think that's part of the movement or not?
तो क्या आपको लगता है कि यह शिविर केंद्र अपने आंदोलन का हिस्सा है या नहीं?
So then there's the Aryaloka Computer Training Institute. I think I've got the title right.
तो बाद में है आर्यलोका कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
That's set up by Arya Ketu with four other order members, Dhammacharis and Dhammacharinis.
तो ये आर्य केतु ने इसकी शुरुआत की, धम्मचारी और धम्मचारिणी चार अन्य उनके साथ में हैं।
It's a public trust. It's a charitable trust.
तो ये public trust है, charitable trust है।
Its purpose is to teach computer literacy to especially poor and deprived people.
और ये जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, जो गरीब लोग हैं उनको कंप्यूटर की साक्षरता निर्माण करने के लिए।
And they also do some dhamma teaching.
और वह भी कुछ धम्म कार्य करते हैं।
So is that part of the movement or not?
तो यह भी अपने आंदोलन का हिस्सा है या नहीं?
Some people have said it's not.
कुछ लोगों ने कहा है कि यह नहीं है।
Some people have said it is.
और कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसा है।
So one more.
और एक।
And this might be a little bit contentious, but I'll try it anyway.
तो ये थोड़ा सा विरोधाभास की बात होगी, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ।
Two of our dhammacharis, a dhammachari and a dhammacharini, who are husband and wife, run a school.
हमारे एक धम्मचारी और धम्मचारिणी है, जो पति पत्नी है, जो एक पाठशाला चलाते हैं।
Dhanavajra and Padmamani, they run a school in Amaravati.
तो अमरावती में दानवज्र और पद्ममणि एक पाठशाला चलाते हैं।
And that school is a charitable trust.
और ये जो पाठशाला है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है।
It has seven directors and they are two of them.
और उसमें सात तो डायरेक्टर है और दो जो है हमारे धम्मचारी।
So is that part of the movement or not?
तो ये फिर अपने आंदोलन का हिस्सा है या नहीं है?
So if you've got your list,
तो अपनी कॉपी में अपनी लिस्ट आपने बना ली।
And we'll see if we agree at the end.
और अंत में हम देखेंगे कि इसके साथ हम सहमत होते हैं या नहीं।
And we'll see if maybe I can change your mind.
तो हो सकता है मैं आपका मन बदल सकता हूँ।
Or maybe you can change mine.
या आप मेरा मन बदल सकते हैं।
And we can discuss and see what conclusions we come to.
और हम चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा निष्कर्ष क्या है।
So, we've looked at various examples of recent developments that some people have questioned as part of the movement.
तो ऐसे कुछ अभी-अभी की कुछ वृद्धि हुई है, जिसके बारे में लोगों ने सवाल पूछे हैं कि यह आंदोलन का हिस्सा है या नहीं।
So it's clear that we're not all of us agreeing about what the movement is.
तो इसका मतलब यह है कि आंदोलन क्या है, इसके लिए हम सभी लोगों का एकमत नहीं है।
And I think it'd be a good idea if we did come to a clearer, common understanding of what our movement is.
तो मुझे लगता है कि इस बात को हमने सहमत, अगर हम एकमत में आते हैं कि हमारी समझदारी आंदोलन के बारे में क्या है, क्या आंदोलन है और क्या नहीं है।
So I'm going to tell you what I view the movement as and what my colleagues in the Preceptors College view it as.
तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं आंदोलन की इस बात को समझता हूँ और जाहिर उपाध्याय के जो सदस्य हैं, वह आंदोलन को क्या समझते हैं।
You may not agree with us.
शायद आप हमारे साथ सहमत नहीं होंगे।
You're free not to agree with us.
और आप स्वतंत्र हैं हमारे साथ असहमत होने के लिए।
We can't force you to agree with us.
हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं सहमत होने के लिए।
But we'd like to discuss.
लेकिन हम चर्चा करना चाहते हैं।
And we'd like to try and see if we can come to a common understanding.
और हम ये देखने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम एक निष्कर्ष तक आते हैं या नहीं।
So what we understand the movement to be follows from what we understand the order to be.
तो आंदोलन क्या है, इस समझदारी तक हम संघ क्या है इस समझदारी के तहत पहुंचते हैं.
We see the order, as we saw yesterday, as a free association of individuals who go for refuge to the three jewels.
कल हमने देखा है कि संघ मतलब ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों का इकट्ठा आना होता है जो तीन रत्नों को शरण जाते हैं.
And we saw that the image for the order is the thousand-armed Avalokiteshvara.
और हमने ये देखा है कि हमारे संघ की जो प्रतिमा है ये हजार हाथ वाले अवलोकितेश्वर की है.
And we saw that there's a twofold movement.
और हमने देखा है कि ये हमारी आंदोलन जो है ये इसके दो अंग है.
There's a moving out of individuals.
तो पहला अंग है कि व्यक्ति जो बाहर जाकर कार्य करते हैं.
Individuals taking responsibility for themselves and working.
व्यक्ति जो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी उठाता है और बाहर जाकर कार्य करता है.
And that those are all joined together by the body of Avalokiteshvara, at the heart of which is the Bodhicitta.
और ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं एक अवलोकितेश्वर का शरीर करके और सभी हाथ जैसे एक शरीर में आए हुए हैं.
So there's an outward going movement and an inward going movement.
तो इस तरह से बाहर जाने वाली एक गति है और दूसरी गति अंदर आने वाली.
And those hands are each of them free and independent.
और ये जो हाथ है इसमें से हर एक मुक्त है और स्वतंत्र है.
They're joined together by their maitri, by their fraternity, their bandhutva.
और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं बंधुत्व के साथ.
They're joined together by the bodhicitta.
और बोधिचित्त से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं.
They're joined together by going for refuge to the three jewels.
और तीन रत्नों को शरण जाने से यह जुड़े हुए हैं.
So what is the movement?
तो आंदोलन क्या है?
Well, the movement is what the hands do.
तो आंदोलन मतलब ये हाथ जो कुछ कार्य करते हैं वह है.
आंदोलन in Hindi, what's? It's nothing to do with movement, is it? It's not the same etymology.
आंदोलन is
etymologically.
Etymologically, yeah, it's movement.
Literally, it means a movement, something moving.
Yeah.
Okay. So in English, movement means moving.
तो अंग्रेजी में जो movement है इसका अर्थ भी हिलने वाला होता है जैसे आंदोलन है उसी तरह.
So the movement is the movement of the hands of Avalokiteshvara.
तो ये जो आंदोलन है मतलब अवलोकितेश्वर के हाथ जो है जैसे आंदोलित होते हैं उस तरह की बात.
It's what those hands are doing.
इसका मतलब ये हाथ जो कुछ कर रहे हैं वहाँ.
It's what they're doing to help other people.
तो लोगों को मदद करने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं.
It's what they're doing to express their creative understanding.
और अपनी सृजक समझदारी को व्यक्त करने के लिए लोग जो कुछ कर रहे हैं वह.
So we understand the movement as the altruistic and creative activity of individual order members.
तो हम आंदोलन का अर्थ यह लेते हैं कि व्यक्तिगत धर्मचारियों द्वारा अपनी जो सृजक कृति है उसी को.
It's activity, not an organization.
तो यह कार्य है यह कोई संस्था नहीं है संगठन नहीं है.
The movement isn't a single organization.
आंदोलन मतलब कोई एक ऐसा व्यवस्थापन या संस्था है ऐसी बात नहीं.
You could even say that every time one of us acts kindly or wisely, that is the movement.
तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति जब मैत्री से और सृजकता से कार्य करता है वह आंदोलन है.
The movement is the expression of the bodhicitta.
जो आंदोलन जो है बोधिचित्त की अभिव्यक्ति है.
Now you might think this seems a bit extreme.
तो आप ये सोचेंगे शायद ये बहुत एक सिरे की बात है.
Or a bit too general.
या आप बहुत ही साधारण बात कर रहे हैं.
But to me it seems really important that we acknowledge what everybody does at the most minute level to help other people.
लेकिन मेरे लिए ये महत्व की बात लगती है कि हम में से हर एक व्यक्ति बिल्कुल छोटे प्रमाण में भी क्यों न हो दूसरों को मदद करने के लिए जो कार्य करते हैं वह आंदोलन.
Yeah, for instance, I know that many of you are having to go from here because your children have exams.
तो उदाहरण के लिए आप में से कुछ लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ता है क्योंकि आपके बच्चों की परीक्षा है.
Well, if you help your children to get good exam results, they're going to have a better life later.
तो अगर आप अपने बच्चों को परीक्षा का अच्छा फल मिलने के लिए मदद करते हैं तो भविष्य उनका अच्छा होगा.
And if you do that out of genuine care and concern for them, well, in a way you could say that was the movement.
तो अगर उनके साथ बड़े प्यार से और उनका ख्याल रखते हुए आप अगर कार्य करते हैं तो हम इसको भी आंदोलन बोल सकते हैं.
Every time you just help somebody in a quite small way, that's the movement.
हर समय किसी को भी आप छोटी छोटी मदद भी करते हैं तो वह आंदोलन होता है.
And although, as I say, this may seem a bit to go too far, I think it's helpful to start at that level.
तो उदाहरण के लिए आपको यह बात एक सिरे की होती है, ऐसा भी लग सकता है, लेकिन यहीं से शुरुआत करना बहुत अच्छा होगा.
Sometimes we think we can only be an order member when we're in the center or when we're meditating.
कभी-कभी हम यह सोचते हैं कि हम धम्मचारी तभी होते हैं जब हम केंद्र में होते हैं या जब हम ध्यान करते हैं.
But we can express our inspiration, we can express our desire to help other beings in every single detail of our lives.
लेकिन हम दूसरों को हमारे जीवन के हर एक क्षण में, हर एक छोटी बात में मदद कर सकते हैं.
So even on your journey back to where you came from, you can be acting in a kindly and a friendly way, and in a way that will be an expression of the bodhicitta.
तो जैसे आप यहाँ से घर जाने के रास्ते में किसी के साथ बहुत मैत्री से और बहुत ही सुजगता से मदद करने की कोशिश करते हैं, तो यही एक तरह से आंदोलन का कार्य.
A bodhisattva does not have office hours.
बोधिसत्व को उसके कार्यालय के समय नहीं होते.
He doesn't see somebody starving and say, "I'm sorry, come back tomorrow in office hours."
तो अगर कोई भूख से मर रहा है तो ये बोधिसत्व ऐसा नहीं बोलता है कि अभी मुझे दुख होता है, कल मुझे ऑफिस के समय पे आकर मिलिए.
I only save living beings between 9 o'clock and 5 o'clock.
तो मैं प्राणियों को तभी बचा सकता हूँ जब 9 से 5 बजे तक का समय होता है.
And of course, I have time off for lunch too.
और उसके बीच में भी मुझे खाने का समय देना चाहिए.
A bodhisattva is a bodhisattva all the time.
बोधिसत्व जो होता है हर समय बोधिसत्व होता है.
Every single action that you do can be helping living beings.
तो हर एक कृति आप जो करते हैं वो प्राणियों को मदद करने वाली होती है.
And often it's our simple acts of kindness that bring people to the Dhamma.
तो हमेशा एक छोटी सी आपकी मैत्री की जो कृति होती है लोगों को धम्म की तरफ लाती है.
If you really want to spread the Dhamma, be kind to people.
अगर आपको सही में धम्म का प्रचार करने की इच्छा है तो लोगों के प्रति आप मैत्री से रहिए, दयालु रहिए.
Just try to help people in an immediate way all around you.
और लोगों को आपके आसपास में छोटी छोटी बातों में मदद करिए.
So to me, that's far more important than the organizations.
तो मेरे अर्थ से एक संगठन के से भी ये बहुत ही ज्यादा महत्व की बात है.
That's what the movement really is.
और यही सही में आंदोलन है.
Now of course, we want to be effective.
निश्चित ही हम लोग परिणामकारक काम कार्य करना चाहते हैं.
We want to really change the world.
और हम सही में दुनिया को बदलना चाहते हैं.
So it, we can do that more easily if we come together.
तो हम इस बात को और आसानी से कर सकते हैं अगर हम साथ में काम करते हैं.
If one of us does a retreat, it has a certain effect.
अगर हम में से कोई शिविर करता है तो इसका कोई विशिष्ट परिणाम होता है.
If five of us do it together, it has a much bigger effect.
अगर हम में से पांच लोग इकट्ठा आकर करते हैं वो शिविर तो उसका और बड़ा परिणाम होगा.
If one of us does a class in a city somewhere, it has a certain effect.
अगर हम में से कोई एक शहर में कोई धम्म वर्ग लेता है तो इसका कोई निश्चित परिणाम होगा.
But it's very difficult.
लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा.
Tejabhadra knows that.
और तेजभद्र को इसका पता है.
But if you come together with others and do it, you can be much, much more effective.
लेकिन अगर आप सभी एक साथ आते हैं और ये कार्य करते हैं तो ये और ज्यादा परिणामकारक होगा.
So we come together to engage in altruistic activity.
तो इसलिए हम एक साथ आते हैं, इकट्ठा आते हैं कुछ लोगों को परोपकारी कार्य करने के लिए.
And especially to teach the Dhamma.
और खास करके धम्म सिखाने के लिए.
And we organize ourselves legally, financially.
और हम अपने आप को कानूनी दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करते हैं.
We have to have some sort of organization as the legal framework for what we do.
हमें किसी तरह की एक संगठन चाहिए, संस्था चाहिए ताकि जो कानूनी तौर पर हमें उसकी मदद हो.
So the movement also consists of individual order members working together through various organizations.
तो आंदोलन मतलब अलग अलग व्यक्ति इकट्ठा आकर किसी संस्थाओं के माध्यम से काम करते हैं उसे हम आंदोलन कहते हैं.
So we a group of people just decide they're going to work together.
तो कुछ लोगों का लोग इकट्ठा आते हैं और अपना गुट बनाकर वो सोचते हैं कि हम एक साथ काम करेंगे.
They organize themselves with some kind of legal framework.
और वो अपने आप को किसी एक विशिष्ट कानूनी दायरे में कार्य करते हैं.
And they do that work.
और वह ये कार्य करते हैं.
So to me, that is the movement.
तो मेरे लिए यह आंदोलन.
The movement also consists of organizations which are run by order members together with sahayaks and mitras in order to help others.
तो दूसरे शब्दों में आंदोलन अगर कहा जाए तो धम्मचारियों के गुट द्वारा और मित्र और सहायकों की मदद से जो कार्य किया जाता है उसे आंदोलन कहते हैं.
Now these organizations are what we call bottom up organizations. From the bottom to the top. From below to above.
तो ये संस्था हम नीचे से ऊपर जाने वाली इस तरह से बात करते
हैं. We sometimes say that you can have an organization that is organized from the top to the bottom.
तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि संस्था मतलब ऊपर से नीचे तक उसको जिसका व्यवस्थापन किया जाता है.
Or you can have an organization that's organized from below to above.
तो या ऐसा आंदोलन संगठन हो सकता है जिसका नीचे से ऊपर तक संगठन किया जाता है.
So what's an example of an organization that comes from the top down?
तो ऊपर से नीचे आने वाला जो संस्था है या संगठन है उसका उदाहरण कौन सा है?
सेना.
वो है सेना.
The army. That's a bottom up top down organization.
तो ऊपर से नीचे कार्य करने वाला जो संस्था है वो सेना का उदाहरण हो सकता है जो इस तरह से कार्य करते.
You start with the generals, then you go all the way down to the jawans.
तो आप जनरल से शुरुआत करते हैं और पूरे नीचे तक आप जवानों तक आते हैं.
And the jawan just has to do what everybody else tells him.
और जवान को वही काम करना पड़ता है जो ऊपर से उसको बताया जाता
है. Nobody asks him what to do.
और वो जवान को कोई नहीं पूछता कि क्या करना चाहिए.
Nobody comes to the jawan and says, well, shall we fight this battle?
कोई भी जवान की तरफ आकर ये नहीं पूछता कि क्या हमने ये लड़ाई करना चाहिए या नहीं.
How should we fight this battle?
हमने इस लड़ाई को किस तरह से करना चाहिए.
Nobody says, do you want to fight this battle?
और कोई भी ऐसा नहीं पूछता उसको कि आपकी ये लड़ाई करने की इच्छा है या नहीं.
They just say, attention, quick march.
तो कहते हैं कि होशियार आगे बढ़ो.
And off he goes and fights.
और फिर ये सेना आगे बढ़ती है जवान और लड़ाई करता है.
So the army is top down.
तो ये सेना का उदाहरण जो है ऊपर से नीचे तक कार्य करने वाला.
Unfortunately here in India sometimes we try to make the movement into an army.
लेकिन दुर्दैव की बात है कभी कभी आंदोलन को भारत में भी हम इस तरह की सेना बनाने की कोशिश करते हैं.
Oh, you want it as an army?
No, he said you are right.
But no, our movement is an organization that comes from the individual order member upwards.
तो हमारा आंदोलन ऐसा है जो व्यक्तिगत हर एक ब्रह्मचारी की तरफ से ऊपर आता है.
A group of order members decide to work together.
तो ब्रह्मचारियों का गुट एक साथ कार्य करना निश्चित करता है.
Usually they will form a trust.
और सहसा वह अपनी संस्था का निर्माण करते हैं.
So the members of the trust create the trust.
तो जो संघ के सदस्य होते हैं वह संस्था निर्माण करते हैं.
And they elect trustees.
और वह अपने विश्वस्तों का चयन करते हैं.
The trustees elect a chairman.
और ये जो विश्वस्त है वह अपना चेयरमैन नियुक्त करते हैं.
But it's the members who are the ultimate authority.
लेकिन जो सदस्य होते हैं इस संस्था के वह अंतिम अधिकार उनके पास होते हैं.
The members actually, as it were, own the organization.
तो ये जो सदस्य होते हैं वास्तव में यही इस संस्था के मालिक होते हैं.
So the organization is built from the individual member upwards.
तो इस तरह से ये जो संस्था है ये व्यक्तिगत ढंग से व्यक्तियों से लेकर बनता है.
And we give responsibility to some people to manage.
और हम कुछ लोगों को जिम्मेदारी देते हैं इस कार्य को संभालने की.
And it's important that we do really give them responsibility.
और ये महत्व की बात होती है कि कुछ लोगों को ऐसी जिम्मेदारी हमें देना पड़ता है.
So that they can do their work of management.
ताकि वह अपने व्यवस्थापन का कार्य कर सके.
But in the end, it's the members who run the thing.
लेकिन अंत में सदस्य ही इन कार्य को चलाते हैं.
So our movement consists of many different organizations.
तो हमारा आंदोलन इसमें कई अलग अलग संस्थाओं का समावेश होता है.
Which come together, which come from order members grouping together to do some altruistic work.
और ये जो है कि कुछ ब्रह्मचारी एक साथ आकर अपना एक समूह बनाकर इस तरह का कार्य शुरू करना चाहते हैं.
And Bhante has always encouraged us to keep those organizations local.
और भंते जी ने हमेशा हम लोगों को ये प्रोत्साहित किया है कि ये जो संस्थाएं हैं उन्हें स्थानिक लोगों के संबंध में रखिए.
So that the people who are doing the work run the activities.
ताकि जो लोग कार्य कर रहे हैं वही इस संस्था को चला रहे हैं.
Then they can respond to the circumstances they find around them.
ताकि आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसको यह लोग प्रतिसाद दे सकें.
And they can do things in the way that they want to do them.
और ताकि ये लोग जिस ढंग से वह स्वयं काम करना चाहते हैं उस तरह से कर सकें।
If they don't want to do much work, they don't have to.
अगर वो चाहते हैं कि ज्यादा कार्य नहीं करना है तो उनको करने की जरूरत नहीं।
If they want to do a lot of work of a certain kind, they can do it.
अगर उन्हें विशिष्ट प्रकार का बहुत ज्यादा कार्य करने की इच्छा है तो वह कर सकते हैं।
So that the movement consists of a lot of local organizations.
तो इसलिए आंदोलन ऐसे बहुत सारे स्थानीय संस्थाओं का संगठनों का बना हुआ।
And there's no central authority.
और इसके लिए कोई भी केंद्रीय ऐसी अधिकार कोई ऐसा केंद्रीय अधिकार नहीं है।
There's nobody in charge.
कोई भी इसका इंचार्ज नहीं है।
इंचार्ज नहीं है।
मुखिया नहीं है।
शुद्ध हिंदी शब्द है। So there's no boss, there's no centralized authority.
तो कोई अधिकारी नहीं है और कोई ऐसा केंद्रीय ऐसा मुखिया नहीं।
You don't need permission to set up an organization.
कोई भी संस्था को स्थापन करने के लिए आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
If you want to do something and you've got other order members who want to do it with you, you do it.
अगर आपको कुछ काम कार्य करना है और कुछ धर्मचारी आपके साथ में कार्य करना चाहते हैं तो आप करिए।
There's nobody who can tell you whether you should or shouldn't.
तो कोई भी आपको आकर नहीं बता सकते कि ये काम आपने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
Of course you're a member of the order, so you want to cooperate with others.
तो निश्चित ही आप संघ के सदस्य हैं, इसलिए दूसरों के साथ सहकार्य से आप कार्य करना चाहते हैं।
So you'll talk with them about what you want to do.
इसलिए आप जो कुछ करना चाहते हैं उनके साथ चर्चा करना चाहोगे।
You'll take advice from your Kalyana Mitras and people you respect.
आप जिन लोगों का सम्मान करते हैं या आपके जो कोई कल्याण मित्र है उनसे आप सलाह लेना चाहते हैं।
But in the end, you do what you feel is best for the sake of other beings.
आखिर में आप सभी जीवित प्राणियों के लिए जो कुछ आप करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं।
You don't need anybody's permission.
आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है।
There's no remote control.
अब कोई भी यहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं है।
You do what you consider to be best.
और आपको जो उत्कृष्ट लगता है अच्छा लगता है वह काम करने के लिए आप खुले हैं।
Each of those organizations is legally and financially autonomous, independent.
और हमारी ये जो हर एक संस्था है ये कानूनी दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र है।
Separate legal organizations.
और ये स्वतंत्र ऐसी कानूनी संस्थाएं हैं।
So the faults of one are not reflected upon the other.
और इसकी वजह से किसी एक की गलती जो है उसका दूसरे पर परिणाम नहीं होता।
If some mistake happens in one organization, other organizations cannot be prosecuted legally.
अगर किसी एक संस्था ने कोई गलती की है तो दूसरी संस्था को कानूनी कार्रवाई दूसरी संस्था पर नहीं की जा सकती।
If one organization goes bankrupt, the other organizations are not touched.
अगर कोई एक संस्था का दिवाला निकलता है तो दूसरी संस्था पर उसका कोई परिणाम नहीं होगा।
They may choose to help, but they do that voluntarily.
तो बाकी संस्थाएं उसे मदद करने का चयन कर सकती है लेकिन अपनी इच्छा से वह करते हैं।
And of course, all of this means that the organization of our movement is very flexible and therefore very strong.
तो इसका मतलब यह है कि हमारे आंदोलन की सभी जो संस्थाएं हैं उसके बारे में हम बहुत ही लचीले हैं और बहुत ही वो संस्थाएं मजबूत हैं।
We can respond in the way that's appropriate in the circumstances we find ourselves.
तो हम जो भी परिस्थिति में है उसके तहत हम सृजक प्रतिसाद देने की हम उसे कोशिश करते हैं।
And of course that's got a cultural implication.
और निश्चित ही इसके कुछ सांस्कृतिक परिणाम भी हैं।
Well, we know that South India is rather different from North India.
तो हमें ये पता है कि जो दक्षिण भारत है उत्तर भारत से बहुत अलग है।
I imagine the people in Kerala have a different way of looking at things to the people in Maharashtra.
तो मुझे कल्पना है कि केरल के लोग चीजों की तरफ अलग ढंग से देखते हैं महाराष्ट्र के लोगों की तुलना में।
Vimala Dhamma is nodding, so I'm sure it's different again in UP.
तो विवेक धम्म अभी
Vimala Dhamma, yeah.
सर हिला रहे हैं। विमल धम्म तो मुझे लगता है कि शायद यूपी में कोई अलग बात होती है।
So in each place you need to work in a different way.
तो हर क्षेत्र जगह में आपको अलग ढंग से कार्य करना पड़ेगा।
गुजरात it's different in different parts of India.
तो भारत के हर अलग अलग क्षेत्र में ये अलग अलग बात है।
It's even different in Vidarbha from western Maharashtra.
तो पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में भी काम करने का ढंग अलग हो सकता है।
And of course there may be a separate Vidarbha state. So we need to be able to respond in the way that's appropriate to the particular circumstances we find ourselves in.
तो हम जिस परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं तो उसको उसके अनुसार प्रतिसाद हम दे सकते हैं।
And we're all different.
और हम सभी लोग अलग अलग
Each of us likes to work in different ways.
हम में से हर एक को कोई अलग ढंग से काम करने की इच्छा होती है.
So we need to try to work in the way that suits us.
तो हम इस तरह से कार्य करना चाहते हैं जो हमें हमारे लिए ठीक है.
So that means we can adapt very quickly to changing circumstances.
इसका मतलब जो बदलने वाली परिस्थिति है उसके साथ हम बहुत ही सहजता से अपना जुड़ा सकते हैं.
And it also means that we're very difficult to stop.
और इसका मतलब इसे रोकना बहुत मुश्किल है.
Now, you know what you have to do if you want to stop an army.
तो आपको पता है अगर आपको किसी सेना को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ता है?
Capture the general.
उस जनरल को आप पकड़िए.
Once Saddam Hussein had gone from Baghdad, the Iraq army couldn't fight.
जब एक सद्दाम हुसैन इराक से चला जाता है तो उसकी सेना कोई लड़ाई नहीं कर सकती.
And so the war, that phase of the war was over.
तो फिर युद्ध का ये जो अंक है समाप्त हो जाता.
But then they learnt to do guerrilla warfare.
फिर वो उसके बाद में वो गोरिल्ला लड़ाई करना सीख जाते हैं लोग.
Now guerrillas don't need generals.
अब ये गोरिल्ला लोगों को जनरल की कोई जरूरत नहीं रहती.
And the Americans can't beat them.
और फिर ये गोरिल्ला को अमेरिका हरा नहीं सकता.
The biggest army in the world can't be beaten. Can't defeat.
तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सेना जो है इस गोरिल्ला की सेना को हरा नहीं सकती.
So ours is a guerrilla organization.
तो हमारी जो सेना है ये गोरिल्ला की सेना है.
If this might be misunderstood, we're dhamma terrorists.
शायद इसको हम गलत समझ सकते हैं लेकिन हम धम्म के आतंकवादी.
But you know what I mean, non-violent.
तो आपको पता है ये अहिंसक आतंकवादी है.
So nobody can destroy us.
तो इस तरह से हमें कोई भी नष्ट नहीं कर सकता.
They can stop one lot of us.
तो हम में से किसी एक गुट को वो रोक सकते हैं.
But another lot of us just keep going.
लेकिन दूसरा हमारा जो गुट है समूह है वो आगे बढ़ता रहे.
So this is the strength of the movement.
तो यही है आंदोलन की ताकत.
And Bhante had this very clearly in mind when he set the movement up.
और भंते जी ने जब आंदोलन की शुरुआत की तो यह बात उनके मन में बहुत स्पष्ट थी.
And so our movement is the creative and altruistic activity of order members.
तो हमारा आंदोलन मतलब धम्मचारियों द्वारा की गई सृजक और परोपकार की कृति है.
And of course they're cooperating with and assisted by Dhamma Mitras and Sahayaks.
और इनको धम्म मित्र और सहायकों के द्वारा सहायता होती है और मदद होती है.
And they can set up if they want to independent autonomous organizations.
अगर इन धम्मचारियों की इच्छा है तो अपने स्वतंत्र ऐसे संस्थाओं का निर्माण कर सकते.
And there's no central organization.
और इसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी केंद्रीय ऐसा संगठन नहीं है.
All those organizations of course are linked by the fact that those who run them are members of the same order.
और ये सभी जो संस्था है ये एक दूसरे से जुड़ी है वो इसी वजह से कि उनको चलाने वाले जो है वो धम्मचारी है संघ के सदस्य है.
All those organizations are controlled and run by order members and assisted by mitras and sahayaks.
तो हमारी सभी जो आंदोलन का कार्य जो है धम्मचारियों द्वारा चलाया जाता है और मित्र और सहायकों द्वारा उनको सहायता की जाती है.
So I often say that we are the true sangh parivar.
तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सही संघ परिवार हैं.
Because well the sangh parivar is the saffron brigade.
तो संघ परिवार मतलब ये जो भगवे रंग का सेना है उस तरह की.
That's what people usually understand.
तो जब संघ परिवार कहेंगे तो यही लोग समझते हैं.
But they're quite clever.
लेकिन ये लोग बहुत ही होशियार हैं.
That the sangh parivar consists of a number of autonomous organizations.
ये संघ परिवार कैसा बना हुआ है तो बहुत ही उनके स्वतंत्र ऐसी संस्थाएं हैं.
There's BJP, RSS, the VHP.
तो उनकी ये संस्था है बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी.
And Bajrang Dal and so on.
बजरंग दल है और भी कुछ है.
They have lots and lots of different organizations.
तो उनके बहुत सारे ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं.
But when Bajrang Dal does something bad, they can say, oh, that's a separate organization.
और जब बजरंग दल कोई बुरा काम करता है तो सभी बोलते हैं कि ये अलग संस्था है.
BJP can say, no, we're not RSS.
और बीजेपी बोलते हैं कि हम RSS वाले नहीं हैं.
And RSS can say, well, we think BJP is not going far enough.
और आरएसएस कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है.
But they're all actually one sangh parivar.
लेकिन ये सब एक ही संघ परिवार है.
So, well, sometimes you can learn from your enemies.
लेकिन कभी-कभी आप अपने शत्रु से भी कुछ सीख सकते हैं.
Of course, they're not our enemies.
निश्चित ही ये आपके शत्रु नहीं है.
Because sarva log apne log hai. But we can learn from them.
लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं.
In English they say that the devil we shouldn't let the devil have all the best songs.
तो अंग्रेजी में कहावत है कि शैतान को ही सभी अच्छे गाने बहुत गाने दीजिए.
We should take some of the devil's songs and sing them.
और ये शैतान के कुछ अच्छे गाने हम भी ले और हम भी गाएं.
So we should take some of the Saffron Brigade's songs and sing them.
तो ये भगवी सेना के कुछ गाने हम भी ले और हम भी वो गाएं.
And yes, we are the Sangh Parivar.
तो हम संघ परिवार हैं.
We consist of a number of autonomous organizations.
तो हम लोग अलग अलग जो स्वतंत्र ऐसे संस्थाएं हैं उससे बने हुए हैं.
And they're all linked by our common spiritual commitment.
और ये सभी जो है हमारी एक सामायिक आध्यात्मिक ऐसी प्रतिज्ञाबद्धता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं.
And we're much more radical in our application of this than the Saffron Brigade.
और हमारे इस तत्वों को लागू करने के लिए हम लोग इस भगवा सेना के से भी ज्यादा मूलभूत मूल तत्ववादी.
Because we're even autonomous at the local level.
क्योंकि हम अपने स्थानिक स्तर पर भी स्वतंत्र हैं.
So that all these organizations cooperate together because they share a common spiritual commitment.
तो ये सभी संस्थाएं एक दूसरे के साथ सहकार्य इसलिए करती है कि उनका सभी का जो प्रतिज्ञाबद्धता है एक जैसी है.
So we cooperate together.
तो हम एक दूसरे के साथ सहकार्य करते हैं.
We form our own organizations.
हम अपनी स्वयं की संस्थाएं निर्माण करते हैं.
And we may even form organizations of organizations.
और हम संस्थाओं के संस्था भी निर्माण कर सकते हैं.
So for instance, most of our activities in India have a representative on the chairman's meeting.
तो उदाहरण के लिए हमारे जो बहुत सारे जो कार्य हैं उसके प्रतिनिधि चेयरमैन के मीटिंग में जाते हैं.
But the chairman's meeting is another organization formed from below to above.
तो चेयरमैन मीटिंग ये ऐसी संस्था है जो नीचे की संस्थाओं से ऊपर का कुछ संस्था निर्माण करती है.
The chairman's meeting has no independent authority.
चेयरमैन की मीटिंग को जो है कोई भी स्वतंत्र ऐसे अधिकार नहीं है.
The chairman's meeting can only make decisions if the councils of the independent centers agree.
चेयरमैन मीटिंग तभी कोई निश्चित निर्णय ले सकती है अगर ये स्वतंत्र संस्थाओं की जो काउंसिल है उसमें कोई निर्णय किया जा सके.
So the chairman's meeting is not a decision making body independent of the centers.
तो ये चेयरमैन मीटिंग जो है इस केंद्रों को केंद्र के बगैर ऐसी कोई निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है.
But it's a way in which we create better cooperation and coordination amongst us.
लेकिन ये हमारे बीच में एक अच्छा सहकार्य और संबंध निर्माण करने की एक संस्था है.
So this is our movement.
तो ये हमारा आंदोलन.
It's the activity of order members.
ये धर्मचारियों की कार्य है.
It's the activity which is trying to help other people and express creative understanding.
ये दूसरे लोगों को मदद करने वाले कार्य है और अपनी समझदारी और सृजकता व्यक्त करने का कार्य है.
It consists, of course, most characteristically of our Dhamma centers and retreat centers.
तो ज्यादातर हमारे जो धम्म केंद्र है और शिविर केंद्र ये संस्था में ज्यादातर शामिल है.
The main function of those Dhamma centers is to teach the Dhamma.
और धम्म केंद्रों का मुख्य कार्य जो है धम्म सिखाना है.
So you could say in a way that's the most characteristic activity of order members.
तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो कार्य है एक धम्मचारियों का एक महत्व का या प्रमुख ऐसा कार्य.
And if in a way that's the most pure form of the movement.
और एक अर्थ से यही आंदोलन का एक शुद्ध रूप है.
Now I should just emphasize that these centers are themselves independent.
मैं इस बात को बताना चाहूंगा जोर देकर कि ये जो केंद्र है सभी यह स्वतंत्र है.
And they don't have any monopoly.
और इनकी कोई एकाधिकार भी नहीं है.
I heard recently that some people wanted to set up a center in a district place, sorry, in a taluka place of a certain district.
तो मैंने सुना था कि किसी एक जिले के एक तालुके के जगह पर किसी को अपना केंद्र निर्माण करना था.
And in that district there was a center of TBMSG.
और उस जिले में TBMSG का केंद्र था.
But the people in the center in the district place said that shouldn't be set up, it's our district.
तो वो तालुका वो जिले के जो संस्था या त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ की जो काउंसिल के लोग वो कहते थे कि ये हमारा जिला है ये हमारा इलाका है आप इसमें और नए नई निर्माण कर सकते.
But actually on Indian constitution you can set up a center wherever you like.
भारतीय संविधान के अनुसार जहां पर भी हो आप केंद्र खड़ा कर सकते हैं.
And that's the way our movement works too.
और इसी तरह से हमारा आंदोलन भी कार्य करता
है. Nobody can control anybody else in that way.
इस तरह से कोई भी दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता.
If you wanted to set up a center at the other end of the same street, you could do.
अगर रास्ते के इस कोने को छोड़कर उस कोने में भी आप नया केंद्र खोलना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता.
Now that might not be very sensible.
तो शायद ऐसा करना उतना अच्छा नहीं होगा.
It might create some confusion.
इससे कोई संभ्रम निर्माण होगा.
But strictly speaking, you can do it.
लेकिन अगर इसकी बात अगर सही बात की जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं.
Well, actually, eventually, I hope there is all over India a Dhamma center at the end of every street.
तो मैं तो यही कल्पना करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हर जगह पर हर रास्ते के एक एक कोने पर हमारा केंद्र हो.
And most of our center, most of our bigger cities could do with 50 centers.
और हमारी जो बड़ी बड़ी शहर है उसमें तो 50 केंद्र भी हो सकते हैं.
We've only got 5 centers in Pune.
अब पुणे में हमारे केवल 5 केंद्र हैं.
That's not enough.
और इतना पर्याप्त नहीं.
We need 100 in Pune and Pimpri.
पुणे और पिंपरी में 100 चाहिए.
Well, in Nagpur now we've got 2 organizations.
अब नागपुर में 2 संस्थाएं हैं.
That's just not enough for Nagpur.
और नागपुर के लिए इतना पर्याप्त नहीं है.
In the Nag Bhumi we should have 1,000 centers.
अब ये नाग भूमि में 1,000 केंद्र होने
चाहिए. So there's plenty of room for more activity.
तो इसलिए बहुत ज्यादा कार्य के लिए बहुत कुछ मौका है.
It's not as if there's one Buddhist and we're all fighting over that one Buddhist.
तो ऐसी बात नहीं कि कोई एक बौद्ध है और कौन हमारे तरफ आए इसलिए आप झगड़ा करें.
There are thousands, hundreds of thousands, lakhs of people who could be Buddhists.
तो लाखों लोग हैं जो बौद्ध बन सकते हैं.
We don't need to fight over them.
और उन लोगों के लिए हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं.
Come together, start your activities.
तो आप एक साथ आइए और अपने कार्य को शुरू करिए.
Do it in a friendly and cooperative way with others doing that work.
और जो कार्य बाकी लोग कर रहे हैं उनके साथ में मित्रता से और सहकार्य से ऐसा काम करें.
And it would be good to coordinate.
और इसके साथ संपर्क प्रस्थापित करना या सहकार्य करना आसान होगा.
And there certainly shouldn't be conflict.
और निश्चित ही उसमें कोई ऐसा संभ्रम नहीं होगा.
But anyway, the Dhamma centers and the retreat centers are the sort of purest form of the movement, you could say.
तो मुझे लगता है कि धम्म केंद्र जो है एक प्रकार आंदोलन का एक शुद्ध रूप है.
Well, maybe not purest, that's the wrong sort of term, but the most characteristic expression of our going for refuge.
शुद्ध कहना शायद उतना उचित नहीं होगा. Most
characteristic, yeah.
लेकिन ये मुख्य लक्षण है हमारे आंदोलन का.
Then, of course, there's all kinds of altruistic activity.
तो निश्चित ही और भी अन्य प्रकार की जो परोपकारवादी कार्य है.
There are organizations which promote that altruistic activity.
और ऐसे संस्थाएं हैं जो इस तरह के परोपकारवादी कार्य को करती हैं.
And our BH organizations organize that.
और हमारी जो बहुजनिता संस्था है इस बात को निश्चित करती है.
And our Karuna organization in the West funds it.
और पश्चिम की जो हमारी करुणा ये संस्था है उसे कुछ आर्थिक सहायता देती है.
Or helps to fund it because others fund it too.
या इसे आर्थिक सहायता देने के लिए मदद करती है क्योंकि अन्य लोग भी आर्थिक सहायता देते हैं.
So we've got organizations that are mainly concerned with Dhamma teaching.
तो हमारे ये संस्था है जिसमें कुछ लोग कुछ संस्थाएं मुख्यतः धर्म सिखाने का कार्य करती
है. We've got organizations that are mainly concerned with social, economic and political help.
और कोई ऐसी संस्था है जो मुख्यतः सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करती है.
And then we've got all the activity that each of us engage in day by day, moment by moment.
और बाद में वह सभी कार्यों का हम समावेश उसमें करते हैं जो हम में से हर एक व्यक्ति हर दिन जो कुछ करता है.
And all of those, to my mind, constitute the movement, although the movement in slightly different senses.
और इन सभी को लेकर हम आंदोलन कहते हैं अलग अलग अर्थ से ये उसमें समाविष्ट होते हैं.
So let's then look at those 5 examples I started with.
तो अभी फिर से हम जो 5 उदाहरण मैंने शुरू किए हैं उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा.
So first of all, there was Buddha Field.
तो सबसे पहले ये जो बुद्ध फील्ड है.
Well, that's run by order members.
तो ये धम्मचारियों द्वारा चलाया जाता है.
They teach Dhamma.
और ये धम्म का कार्य करते हैं.
And they practice Dhamma together.
वो साथ में आकर धम्म का आचरण करते हैं.
So, according to my definition, that's part of the movement.
तो मेरी व्याख्या के अनुसार वह आंदोलन का हिस्सा है.
Then we've got Jambudvipa.
उसके बाद जम्बूद्वीप है.
Well, Jambudvipa does some Dhamma teaching and it's helping to promote social projects.
तो यह धम्म कार्य करता है और सामाजिक प्रकल्पों को मदद करने की कोशिश करता है.
So according to my definition, that's definitely part of the movement.
और मेरी व्याख्या के अनुसार यह निश्चित अपने आंदोलन का हिस्सा है.
Then there's the Nandet Urgyen Sangharakshita, sorry, the Urgyen Sangharakshita Dhyan Bhavana Kendra. Well, they're teaching Dhyan Bhavana. Well, that's, as I've always understood it, part of the Dhamma. So that's a Dhamma center. So clearly it's part of the movement. Then there's the Aryaloka Computer Training Institute. Well, order members are the majority on the trust.
तो उस संस्था में धर्मचारी बड़ी संख्या में हैं.
It's a charitable organization.
ये charitable संस्था है.
It's trying to help people who couldn't get computer education otherwise get educated in how to use computers.
तो जो लोग को प्रशिक्षण नहीं मिलता है कंप्यूटर में उनको मदद करने की यह संस्था काम करती है.
So to my mind, that's a part of the movement.
और मेरे दृष्टि से यह भी आंदोलन का हिस्सा है.
Principally under the heading of social activity.
और खास करके एक सामाजिक कार्य के संदर्भ से यह कार्य है.
That is activity to help people with their social and economic problems.
तो इसका मतलब कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर कार्य करने के लिए यह संस्था कार्य करती है.
And of course they also do some dhamma teaching.
और निश्चित ही यह कुछ धम्म कार्य भी करते हैं.
And then fifthly, there's the school in Amaravati.
तो पांचवी बात है अमरावती की यह पाठशाला.
Well, so that's got, it's a charitable organization.
तो ये एक charitable संस्था, विश्वस्त संस्था है.
There are two order members on that trust.
और इस विश्वस्त संस्था में दो धर्मचारी हैं.
They're definitely trying to help people through providing good education at a cheap price.
और कम कीमत में अच्छा शिक्षण देने की वो कोशिश कर रहे हैं.
So what I would say here is that, well, it's not an organization that's part of the movement exactly.
तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो संस्था करके आंदोलन का हिस्सा नहीं है.
Because it's not got a majority of order members on its trust.
तो क्योंकि धम्मचारी ज्यादा संख्या में, बहुत संख्या में इस संस्था में नहीं है.
But I'm proud of that work.
लेकिन ऐसे कार्य का भी मुझे अभिमान है.
I'm very pleased that other order members are doing that work.
तो मुझे ये आनंद होता है कि कुछ धम्मचारी ये कार्य करते हैं.
I want to feel that's my work.
तो मैं यही भावना रखना चाहता हूँ कि ये मेरा कार्य है.
So to my mind, that's part of the movement too.
और इसलिए मेरे मन से यह भी आंदोलन का हिस्सा है.
Because whatever order members do to help others is part of the movement.
क्योंकि जो भी कुछ धर्मचारी दूसरों को, लोगों को मदद करने के लिए कार्य करते हैं, वह आंदोलन का हिस्सा है.
So you see what I mean, that if you like, you've got three different categories under the heading of the movement.
तो आंदोलन के इस शीर्षक के अंदर आप देख सकेंगे कि ये तीन प्रकार के शीर्षक है.
You've got the work that is under the control of order members, that is purely to spread the Dhamma.
तो पहली स्तर हमने देखा है कि जो पूरी तरह धर्मचारियों के नियंत्रण में यह कार्य होता है, जो धम्म सिखाने का कार्य करता है.
Then you've got, secondly, the work that is to help people with their social, political, and economic problems.
और दूसरा हमने देखा है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजकीय क्षेत्र में समस्याओं पर कार्य करने के लिए हम संस्था चलाते हैं.
And if that is controlled, the organizations are controlled by order members, well then that is an organization, as it were, that's part of the movement.
तो अगर ये संस्था धर्मचारियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ये पूरी संस्था हमारे इस आंदोलन का हिस्सा है.
And then you've got activity of all different kinds, from an organized kind to a very individual kind, which is part of the movement in a third sense.
तो तीसरे अर्थ से ऐसे सभी कार्य जिसमें धर्मचारी संस्थागत रीति ढंग से हो या व्यक्तिगत ढंग से हो करते हैं, वह तीसरा ढंग.
But personally, I would like to feel that whatever order members did to help others was my work.
तो निश्चित रूप में मैं इस भावना को रखना चाहता हूँ कि बाकी धर्मचारी, जो भी धर्मचारी दूसरों को मदद करने के लिए जो कार्य करते हैं, वो मेरा कार्य मैं समझता हूँ.
I feel proud of what they do.
जो कुछ वह कार्य करते हैं, उसका मुझे अभिमान लगता है.
And I want to support what they do.
और वो जो कुछ करते हैं, उसमें मैं सहायता करना चाहता हूँ.
But I hope that this way of looking at it clarifies things to some extent.
और मुझे आशा है कि इस तरह से कार्य करना, इस तरह से इस तरह की तरफ देखना बातों को स्पष्ट करेगा.
In the end, you could say it doesn't matter what you call the movement.
तो एक अर्थ से आखिर आप आंदोलन किस बात को कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
If you are an order member and you believe that a certain activity will help people, just do it.
अगर आप ब्रह्मचारी हैं और अगर आपका विश्वास है कि विशिष्ट कार्य लोगों को मदद करने वाला है तो आप करना शुरू कर दीजिए.
If somebody says, "Oh, that's not part of the movement," say, "Okay, it's not part of the movement, but I'm just trying to help people."
तो अगर कोई आकर कहता है कि ये आंदोलन का हिस्सा नहीं है, तो कहिए कि ठीक है, ये आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं लोगों को मदद करना चाहता हूँ.
While we're trying to argue about whether it's part of the movement or not, people need help.
तो जब हम यहाँ झगड़ा कर रहे हैं कि आंदोलन का हिस्सा नहीं आया है, तब लोगों को मदद की जरूरत है.
And we often waste a lot of time arguing about relatively small matters of words.
और हमेशा हम ये बहुत ही कम महत्व के बातों पर ज्यादा समय झगड़ा करने में गवाते हैं.
So far I've emphasized the independence and autonomy of our organizations.
तो अभी तक मैंने अपने इन संस्थाओं के स्वतंत्रता के बारे में बात की है.
And I've given a very inclusive interpretation of what the movement is.
आंदोलन क्या है, इसका एक सर्वसमावेशक ऐसा मैंने व्याख्या आपके सामने रखी है.
But there's a question that arises, and it arises very frequently in India.
लेकिन भारत में एक सवाल हमेशा पैदा होता है और बहुत ज्यादा पैमाने पर यह पैदा होता है.
What about standards?
तो इसके स्तर के बारे में.
What about organizational standards and ethical standards?
तो ये जो संस्थागत जो स्तर है उसका और नैतिक स्तर है, इसके बारे में क्या?
You know, if order members are conducting an activity and they do it very badly and there's a mess and there's money lost and so forth, even though they're acting properly, well, it reflects on everybody else.
तो भले ही धर्मचारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई संस्था चला रहे हैं, लेकिन उसमें अगर वो कुछ गलत कार्य करते हैं, आर्थिक कोई नुकसान होता है, तो इसका संघ पर परिणाम होता है.
So what about standards of organizational effectiveness and efficiency?
तो ये संस्थाओं के परिणामकारकता का और उनके कृतिशीलता के बारे में स्तर का क्या?
And what about ethical issues?
और भी इसे नैतिक समस्याओं के बारे में क्या?
Sometimes order members acting together in organizations do things that others feel are unethical.
कुछ धर्मचारी कभी संस्था में ऐसे कोई कार्य करते हैं तो बाकी लोग उसे अनैतिक कार्य कहते हैं.
Sometimes whole organizations become unethical.
कभी कभी ये पूरी संस्था जो है अनैतिक कार्य करती है, ऐसा लग सकता है.
For instance, bullying goes on.
उदाहरण के तौर पर लोगों को उसके अंदर जोर जबरदस्ती की जाती है.
We had a very bad example of this in the early days of our movement in England.
इंग्लैंड में हमारे आंदोलन की शुरुआत के काल में इसका एक बहुत ही बुरा उदाहरण हमने देखा है.
But yes, sometimes people behave badly to others in the organization.
तो ऐसी बात होती है, कभी कभी लोग अपने ही संस्था के अंदर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं.
So how are we going to preserve good organizational and ethical standards?
तो हमारे अंदर हम एक अच्छे संस्थागत स्तर को कायम कैसे रख सकते हैं, नैतिक स्तर को कायम कैसे रख सकते हैं?
In the West, we have a mechanism that you no longer have in India.
तो पश्चिम में ऐसा कुछ एक तंत्र है जो अभी तक भारत में नहीं है.
Every center in the West has the opportunity to choose a president.
हर केंद्र को वहाँ के पश्चिम के अपना अध्यक्ष का चयन करने का मौका मिलता है.
And those presidents are accepted by the preceptors college, or have been accepted by the preceptors college.
और ये जो अध्यक्ष है उपाध्याय कॉलेज द्वारा, उसको अभी तक मान्यता दी जाती थी.
In India there used to be a president. Well, Bhante was the first president.
तो भारत में भी अध्यक्ष की प्रथा थी, भंते सबसे पहले अध्यक्ष थे.
And then Lokamitra was the president of all centers.
उसके बाद में लोकमित्र जी सभी केंद्रों के अध्यक्ष थे.
But I think in 1997 he gave up those responsibilities.
और मुझे लगता है कि 1997 में उन्होंने ये जिम्मेदारियां छोड़ी.
It was earlier than that, wasn't it? I can't remember when it was.
मुझे लगता है शायद इसके पहले भी हो.
And since then, until very recently, there have been no presidents.
और तब से लेकर अभी तक ऐसे कोई अध्यक्ष नहीं रहे.
I believe that two centers have asked Lokamitra to be their presidents.
और मुझे विश्वास है कि कोई दो केंद्रों ने लोकमित्र को अध्यक्ष बनने के लिए कहा है.
But other than that, there are no presidents here.
और उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी केंद्र को कोई अध्यक्ष नहीं है.
Lokamitra had so many presidencies that he didn't feel he could fulfill them properly.
लोकमित्र के पास बहुत सारे केंद्रों के अध्यक्ष पद था और उनको लगता था कि इन सभी का अध्यक्ष रहना मुझे संभव नहीं है.
That's what I remember at least.
और मुझे यह बात याद है.
But we have no presidential system here in India.
लेकिन भारत में ऐसे कोई अध्यक्षीय ऐसी पद्धति नहीं है.
And the president in the West is somebody from outside the center, a senior order member from outside the center who keeps an eye on the center.
तो पश्चिम में अध्यक्ष वह होता है जो अपने केंद्र में नहीं रहता, बाहर रहता है और जो केंद्र पर कुछ ख्याल रखता है.
And is able to intervene if there are difficulties there.
और अगर वहां कोई कठिनाइयां है तो वह वहां आकर हस्तक्षेप कर सकता है.
And helps the center to overcome any problems and to remain united with the rest of the movement.
और वह अगर केंद्र में कोई समस्या है और लोगों को इकट्ठा रखने के लिए यह अध्यक्ष मदद करता है.
So you don't have that system here.
यहाँ पर यह पद्धति नहीं है.
And I think that you need to consider, do you need it?
और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका विचार करना जरूरी है कि आपको अध्यक्ष की जरूरत है.
Is there a need for something like that?
तो क्या इस तरह के किसी ढंग की पद्धति की आपको जरूरत है?
If you don't have that, how are you going to work to keep good standards both ethically and organizationally?
अगर आप सोचते हैं कि अध्यक्ष की जरूरत नहीं है तो आपके केंद्र का जो नैतिक स्तर है या संस्थागत स्तर है उसको ऊंचा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
How are you going to keep all the organizations united?
तो आप अपने इन सभी संस्थाओं को इकट्ठा रखने के लिए क्या कर सकते हैं?
Up until now it's been the public preceptor's responsibility to think about these things.
तो अभी तक जाहिर उपाध्याय की जिम्मेदारी थी इन बातों के बारे में सोचने की.
We ran as it were the presidential system.
तो एक तरह से हम लोगों ने इस अध्यक्षीय पद्धति को चलाया अभी तक.
But we want to give up that responsibility and make the order as a whole more responsible in this way.
तो हम इस जिम्मेदारी को छोड़ना चाहते हैं और एक पूरे संघ को इसमें और ज्यादा जिम्मेदार बनाने की कोशिश करना चाहते हैं.
So I'd like you to think about that and discuss that this morning.
और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में आज की सुबह में चर्चा करें, सोचें.
How are you going to preserve good standards ethically and organizationally within the movement?
तो आप आंदोलन के अंदर आपके संस्था का जो संस्थागत स्तर है और नैतिक स्तर है उसे अच्छा कैसे कायम रख सकते हैं?
So my two questions today are very much like yesterday's.
तो मेरे जो दो सवाल हैं आज के कल के ही सवाल के जैसे हैं.
Do you agree with my understanding of what the movement is?
क्या आप मेरी जो समझदारी है आंदोलन क्या है इसके साथ आप सहमत होते हैं?
I know there are one or two people even here who are not in complete agreement.
और मुझे पूरी पक्का पता है कि आप में से कुछ एक दो लोग होंगे जो निश्चित रूप से मेरे साथ सहमत नहीं होंगे.
And that's good. That means that we can have some useful discussion at which we can discover a deeper truth.
तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर और अच्छा इस पर हम चर्चा कर सकते हैं तो इससे गहराई में जाकर हम और कोई सत्य को ढूंढ सकते हैं.
But I understand the movement to be the collection, the aggregate of our altruistic and creative activity.
तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो आंदोलन है ये ब्रह्मचारियों का जो सृजक कार्य है उसको उसका सभी को इकट्ठा करके बनता है.
And I understand that to consist of three different categories, so to speak.
और मुझे ऐसा समझता है कि ये तीन अलग अलग वर्ग में इसका विभाजन होता है.
There's first of all dhammic activities under the control of order members.
तो सबसे पहले है धम्म कार्य जो धम्मचारियों के नियंत्रण में होता है.
Secondly, there's purely social, economic and political activity under the control of order members.
दूसरी खास करके सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक ऐसी संस्थाएं जो धम्मचारियों के नियंत्रण में होती हैं.
And then thirdly, there's the general activity of order members in which they do not have the ultimate control or where they're just acting individually.
तो तीसरी बात यह है कि जहां पर धम्मचारियों धम्मचारी अपने इस कार्य में सहभागी होते हैं लेकिन ऐसे व्यक्तिगत रूप में या साथ में आकर जिन संस्थाओं पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता.
And that all these activities are linked by our common commitment to the three jewels.
और ये सभी जो कार्य है हमारे तीन रत्नों के प्रति जो हमारा शरण गमन है उसके साथ जुड़ी हुई होती है.
So do you agree with that perspective? What problems do you see in it?
तो क्या इस दृष्टिकोण से आप सहमत हैं? क्या इसमें आप कोई समस्या दिखाई देती है?
And then, how are we going to maintain and promote good standards of ethics and organization within the organizations that the movement consists of?
और उसके बाद की बात है कि अपने आंदोलन में अपने संस्थाओं का संस्थागत स्तर और नैतिक स्तर अच्छा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
Do you need something like the president's?
क्या आपको किसी अध्यक्ष की जरूरत होती है?
If you do, how are you going to have them?
अगर आपको जरूरत है तो ये इनको कैसे हम निर्माण कर सकते हैं?
Maybe there are other ways. What other ways can you suggest?
हो सकता है कि इससे और भी कोई अलग तरीके होंगे. क्या आप उनको सुझाव दे सकते हैं?
We in the Preceptors College feel that this is our job as order members collectively to sort out.
और उपाध्याय कॉलेज में हम लोगों को ये लगता है कि एक धम्मचारी करके संघ करके इस बात का हल निकालना हमारा कार्य है.
We want to hand on our responsibility for working these things out.
और हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो जिम्मेदारी है हम आप पर सभी ब्रह्मचारियों पर देना चाहते हैं.
So have a good discussion.
तो आपका अच्छी चर्चा हो ये शुभेच्छा देते हैं.
I shall be very interested to see what you come out with.
और आप किस निष्कर्ष के साथ आते हैं ये देखना हमें बहुत अच्छा लगेगा.